السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج 29वीं की शब है और ज़्यादा ये चांस है कि यही रमज़ान की भी आखिरी रात होगी, इसके बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। हमेशा हर साल इस दिन का प्रोग्राम करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, और इसकी वजह ये होती है कि रमज़ान शुरू होता है तो वो एक खुशी, एक शौक और एक लज्जत, और जब ये दिन आता है तो जैसे अपने किसी प्यारे को रुखसत करना हो तो इंसान का हाल क्या होता है। खुशी नहीं होती, उसके जाने का गम होता है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे वो साथी भी चले जाते हैं जो सिर्फ रमज़ान के रमज़ान हमसे मिलते हैं, तो उनके जाने की भी उदासी होती है। और साथ ये भी बात होती है कि अब पता नहीं दोबारा रमज़ान मिले कि नहीं मिले। बाज़ हमारे साथी लास्ट रमज़ान में हमारे साथ थे, इस दफ़ा नहीं है, पता नहीं अगले रमज़ान में मैं हूँ कि नहीं हूँ, और कौन हम में से हो और कौन नहीं हो, कौन गारंटी दे सकता। और ये महीना रुखसत हो जाता है तो अल्लाह ताला की रहमतों के समझ लें वो जो बारिश थी वो चली जाती है। और इसकी तो अब यानी आखिरी आखिरी घंटे यानी समझ रहे रह गए, ये कोई 24 आवर भी नहीं रह गए। कल इस वक्त जरूर हर एक सोचेगा कि वो कहाँ गया वक्त जिसमें नेकी का शौक था, जोश था और आसानी थी। वो जोश भी खत्म हो जाता है, आसानी भी और शौक भी। कल इस वक्त रमज़ान ख़त्म हो चुका होगा और जो आम दिन हैं वो शुरू हो चुके होंगे, जिनमें नेकियों का अजर उतना होगा जितना के नॉर्मल दिनों में होता। सूरज तो यही निकलेगा जो आज निकला था, ज़मीन भी यही होगी, आसमान भी यही होगा, लेकिन बरकतों के ये दरवाजे बंद हो चुके होंगे। बख्शिश की जो इस वक्त ये जो हमें चांस मिले हैं ये ख़त्म हो चुके होंगे और नेकियों के अजर वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। मस्जिद फिर एक साल के लिए खाली हो जाएगी, कुरान बंद करके रख दिए जाएंगे, रातों की तहज्जुद ख़त्म हो जाएगी, रोज़े ख़त्म, नेकी की बहारें ख़त्म। तो वो जो सारी रहमतें थी ना अब वो रुखसत हो जाती हैं इस मेहमान के जाने से। और आपने देखा होगा जब कभी भी आप बैक होम जाते हैं या आपके घर कोई गेस्ट बहुत दूर से आया होता है, साल में एक दफ़ा ही चक्कर लगता है उनका, तो जिस दिन उनको रुखसत करना होता है वो कैसा दिन होता है? आप अपने सारे काम छोड़ के बस उनके पास बैठ जाते हैं, चाहे पिछले दिनों में ना भी इतना टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन आप कहते हैं कि आज तो इसने चले जाना, बार बार ये कहते हैं आज तो इसने चले जाना, तो रमज़ान ने भी आज चले जाना। और इसको खैरबाद कहने के लिए इसके साथ टाइम स्पेंड करें आज, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप और जाहिर है अपने काम भी होते हैं, लेकिन और जितने भी काम हैं उनके साथ जहन में ये रहे कि आज ये मेहमान चला जाना है। तो लिहाजा जो जाती जाती घड़ियां हैं ना इनको अवेल कर लें। जाती घड़ियों से ये मतलब नहीं है कि मगरिब से पहले का टाइम, जाती घड़ियां अब ये सारा दिन हमारा यानी अलविदाई का ही दिन है ना, अलविदा कहने का। जो फजर आज होगी ना कल वो सेम नहीं होगी, जो आज की जुहर होगी कल सेम नहीं होगी, जो असर होगी वो सेम नहीं होगी, तो कल टोटली सब कुछ बदल चुका होगा। और दूसरी ये बात है कि आमाल भी जो होते हैं ना अपने खात्मे से पहचाने जाते हैं और खात्मे पे डिपेंड करते हैं कि खात्मा आपने कैसे किया, एंड आपने कैसे किया। तो अगर हम थोड़ा बहुत कुछ कमियां रह भी गई थी तो कम से कम एंड इतना अच्छा कर दें कि वो यादगारी पता है क्या रहती है, जो अलविदाई दिन होता है ना वो यादगार रह जाता है। आप कहते हैं ना फलां मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आए, फलां ने फलां से मुलाकात हुई, वो मुझे खुदाफिज कहने आई, तो वो जो एंड का होता है ना टाइम वो इंसान को हमेशा याद रहता है। सर अल्लाह ताला के यहाँ भी जो आमाल है ना वो एंड के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंसान की जिंदगी के भी एंड के जो आमाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे और उनकी इतनी बड़ी अहमियत होती है कि जिस अमल पे भी इंसान को मौत आती है उसी पे वो उठाया जाएगा। तो हम आज कोशिश करें कि जो हम तस्बीहात है उनको ज्यादा बढ़ाएं, नवाफिल को ज्यादा करें। बेशक आपने कुरान पाक अपना मुकम्मल कर लिया होगा, खत्म कर लिया होगा, उसके बाद बंदे के अंदर इतना जोश नहीं रहता कि मैं जल्दी जल्दी और पढ़ूं, फिर कहते हैं अच्छा खत्म तो हो गया ना अब रिलैक्स करो। नहीं, आज जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि आज हर हर्फ पे जितना अजर आपको मिलेगा आज की मगरिब के बाद नहीं मिलेगा और अगले रमजान तक नहीं मिलेगा, अगले रमजान में जाके फिर मिलेगा, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा इतना अजर लेने के लिए। आज जितना नमाज का अजर होगा वो पूरे साल में बाकी नहीं होगा, अगले रमजान तक आपको वेट करना पड़ेगा। आज जो आप सदका करेंगे ना, चाहे आप 2 दिन बाद भी, अगले दिन भी करें, तब 2 दिन तो छोड़े, अगले दिन भी करें, तब भी सदके का वो अजर नहीं होगा जो आज के दिन होगा। सुभान अल्लाह। तो ये सेल खत्म होने वाली है, कभी कभी वो दिखाते हैं ना कि कितने आवर्स रह गए, इतने मिनट्स, अब 10 9 काउंट डाउन शुरू कर देते हैं। देखा होता है आपने कभी कभी ये ऑनलाइन सेल्स लगती हैं तो फिर वो काउंट डाउन भी उन्होंने रखा होता है वहाँ, तो ये भी काउंट डाउन शुरू हो गया रमजान का, मगरिब के बाद 10:00 टाइम इज ओवर। तो अपनी कार्ट भर लें नेकियों से और जल्दी जल्दी चेकआउट कर लें, इससे पहले के टाइम ओवर हो जाए सेल का, फिर ज्यादा कीमत पे यही चीजें लेनी पड़ेंगी, इतनी कीमत पे नहीं मिलेंगी। अभी तो 1 हर्फ पढ़ रहे हैं 70 गुना मिल रहा है, तब तो 1 हर्फ पढ़ेंगे तो 10 गुना ही मिलेगी, है ना। तो जाती भी घड़ियों में अल्लाह ताला से दुआएं भी कर लें, और अगर कोई बख्शिश की दुआ से बड़ी दुआ होती ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर आयशा रज़ी अल्लाह ताला को बताते। उन्होंने कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन किया था कि यार रसूलल्लाह अगर वो रात मुझे मिल जाती है तो मैं उसमें क्या दुआ मांगू, व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, और हम सब के लिए रहनुमाई मिल गई। इवन हम सोचते ही रहते पता नहीं क्या मांगे, क्या करें, कैसे कहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो कुछ मालो दौलत मांगने का ना भी कहा होता, औलाद मांगने का कह लेते, चलो औलाद भी ना सही, इस्लाम की तरक्की और इस्लाम का उरूज मांगने का कह लेते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शीश का फरमाया कि बख्शीश मांगो। इससे हमें इसकी अहमियत का पता चलता है कि ये रातें बख्शीश मांगने की हैं बस, कि इंसान तौबा करे तौबा करे तौबा करे। और तौबा में देखिए, जब इंसान ना कभी नेकियां करता है ना तो उसके जहन में, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जहन में थोड़ी ये आ जाता है कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूं तो मुझे क्या है फिर ना, मुझे तो कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। हालांकि इनका ये पता ही नहीं कि इनके साथ हमने कितनी कमियां कोताहियां कर दी, और ये नेकियां कबूल भी हो रही हैं हमारी कि नहीं हो रही, जाया तो नहीं हो रही, कहीं हमने कुछ ऐसा काम तो नहीं कर लिया जिससे नेकी मिट जाती है। और हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हमारी नेकियां तो हम पूरी जिंदगी भी करते रहे ना तो वो कभी भी हम उन सब चीजों का जो हमारे पास हैं उनका हक नहीं अदा कर सकते। क्यामत के दिन इंसान इतनी नेकियां लेकर आएगा, इतनी नेकियां लेकर आएगा कि पहाड़ पे रख दी जाए ना तो वो भी उसका बोझ ना बर्दाश्त कर सके, इतनी नेकियां लाएगा। लेकिन यार हमारी तो इतनी भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे आदमी की बताएंगे जिसकी इतनी ज्यादा नेकियां, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला की नेमतें उसके मुकाबले में आएंगी तो ऐसा लगेगा कि सारी नेकियां फना हो गई। इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की नेमतों की कीमतों की आप एक आंख की कदरों कीमत देख लें, अल्लाह अकबर। तो इसके बदले में आप सारी जिंदगी भी अल्लाह ताला के आगे सजदे में पड़े रहे तो इस एक आंख की नेमत का आप हक नहीं है, इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। क्योंकि लोगों ने सोचा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुभान अल्लाह वबी हमदी कहे उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं, जो ये कहे उसके लिए इतनी। तो एक आदमी ने कहा फिर हम कैसे हलाक हो सकते हैं अगर इतनी नेकियां लिखी, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जिक्र करते हैं जी 10 गुलाम आजाद करने के बराबर, 100 नेकियां लिखी जा रही, 1,000 लिखी जा रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश होते हैं, तो हम कहते हैं अब इसके बाद हमें क्या मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, एक आदमी इतनी नेकियां लेकर आएगा तब भी अल्लाह ताला की एक नेमत भी उसका हक नहीं अदा हो सकेगा। इतनी नेकियां होंगी पहाड़ों के पर उसके ऊपर रख भी दी जाए तो पहाड़ बोझ से दब जाए, इतनी नेकियां कोई लाएगा। तो हम कैसे अल्लाह ताला की नेमतों की कीमत दे सकते हैं, इन नेमतों का हक अदा कर सकते हैं? हम तो जितना मर्जी भी कोशिश कर लें लेकिन नहीं हो सकता। तो अजर तो बाद की बात है, पहले जो आपके पास नेमते हैं उनका तो हम शुक्र अदा कर लें, वो भी नहीं हम कर सकते, उल्टा हमारे से गुनाह सरजद हो जाते हैं, हमारे से अल्लाह ताला की नाफरमानियां हो जाती हैं। तो उसकी फिर हम क्या करें, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम अल्लाह ताला के आगे तौबा इस्तग़फ़ार करें। और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को की तरफ हमें बुलाया भी है कि ए लोगो तुम तौबा इस्तग़फ़ार करो, या ये लदीना आमनो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसुहा, तौबा करो अल्लाह के आगे, सच्ची तौबा, पक्की तौबा। और तौबा का मतलब क्या होता है एक्चुअली, तौबा जो ट्रू रिपेंटेंस होती है ना वो क्या है, चेंज्ड बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाए, ये होती है सच्ची तौबा। और अल्लाह ताला खुद बुलाता है तौबा की तरफ कि मैं तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, तुम आओ तुम तौबा तो करो। अल्लाह ताला की रहमत कितनी इंसान के ऊपर है ना, वरना इंसान एक गुनाह करता है, दूसरा करता है, तीसरा, अल्लाह ताला के आगे और उसकी नेमतों के आगे और उसकी बख्शिश के आगे तो एक गुनाह भी नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी क्या फरमाता है, वमन यअमल सुअन, जो कोई बुराई करता है ना, और यज़लिम नफ्सहु, या उसने अपनी जान पे कोई जुल्म कर दिया, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर वो अगर अल्लाह के आगे इस्तग़फार करता है, यजिदिल्लाह गफूर रहीम, कितना मेहरबान रब है कि वो अल्लाह ताला को फिर पाएगा गफूर रहीम। वो ये नहीं अल्लाह ताला को पाएगा कि अल्लाह ताला नहीं माफ करता और तुम्हें अब कभी माफी नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कहता है जो तुमसे माफ, कोई ऐसा गुनाह हो गया ना, माफी तुमने मांग ली तो तुम क्या पाओगे अपने रब को, दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला, अल्लाह हू अकबर। और उसका ये यानी उसको ये खुशी है कि बंदा तौबा इस्तगफार कर ले और अपनी बख्शिश करा ले। उसने तो फरिश्तों तक को ये कह रखा है, जब देखिए हदीस में आता है कि जब कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है, गुनाह करता है, दाएं तरफ बैठा फरिश्ता 6-7 तक अपने कलम को रोके रखता है, अगर वो अपने काम पर शर्मिंदा होता है, अल्लाह से बख्शिश का तलबगार होता है, तो वो फरिश्ता अपना कलम पीछे हटा लेता है, लिखने से बाज रहता है, वरना एक एक गुनाह लिखता है, एक गुनाह लिखता है, लेकिन वो कितनी देर तक वेट करता है कि हो सकता है ये माफी मांग ले, माफी मांग लेगा तो उसका गुनाह लिखा ही नहीं जाएगा। मगर इंसान अक्सर इस तरफ आता नहीं है और माफी मांगना ही उसको इतना मुश्किल लगने लगता है कि वो सोचता है कि अगर माफी मांग ली मुझसे तो दोबारा हो जाएगा तो फिर क्या फायदा, या मैंने तो अभी ये गुनाह छोड़ना ही नहीं है। तो देखिए हम अल्लाह ताला माफ करने को तैयार हो और इंसान माफी लेने को तैयार ना हो तो घाटे में कौन है? यानी ऐसा नहीं कि आगे कोई ऐसा रब हो जो कि इंसान को माफ ना करना चाहता हो तो फिर तो हाँ समझ में आता है कि क्या फायदा, मैं तो माफी मांगूंगा मैं तो माफी तो मुझे मिलनी नहीं। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे सामने वो रब है जो तो बल्कि हमारी तौबा से खुश होता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह के हजूर तौबा करता है अल्लाह ताला अपने इस बंदे की तौबा पे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उस आदमी से भी ज्यादा खुश होता है जो किसी जंगल में अपनी सवारी पे सवार हो और उस सवारी के ऊपर खाना पीना उसका सब लदा हुआ, अचानक सवारी गुम हो गई। अब वो तो इतना मायूस हो गया कि डेजर्ट है उसके अंदर, सवारी गुम हो जाने का मतलब है डेथ। तो वो एक दरख्त के नीचे लेट जाता है, अब वो कहता है कि अब तो अब मेरे अब मौत का इंतजार करता हूँ, अचानक सवारी उसके सामने आके खड़ी होती। अब ये एक बद्दू की लाइफ के अंदर से ये बात बताई, क्योंकि शायद हमें इतनी इस चीज की यानी इतना हमें समझ ना हो, लेकिन आप एक उस बंदे की उस पर गौर करेंगे ना कि वो किस सिचुएशन में है, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि वो सवारी देखना मतलब है लाइफ, उसको लाइफ मिल गई। तो कहता है इतना खुश होता है, कहता है ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, इतना जज्बात में आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा हूँ। इस इतने खुश आदमी से भी ज्यादा अल्लाह ताला खुश होता है बंदे की तौबा पे, अलग उसको क्या, आप तौबा करें ना करें उसको क्या, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बातचीत में कौन सा कोई फर्क पड़ता है। लेकिन बंदे को तौबा करने से फायदा है, तो अल्लाह ताला की रहमत की तो इतनी वसत है, इतनी वसत है कि अगर काफिर को भी पता चल जाए ना तो वो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस ना हो, वो भी कहेगा कि मुझे अल्लाह की रहमत से शायद जन्नत मिल ही जाए, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह अकबर। लेकिन साथ ही हदीस में है कि अगर मोमिन को पता चल जाए ना अल्लाह ताला का अजाब कैसा है तो वो जहन्नुम से कभी बेखौफ ना हो, और जिससे कि काफिर को अगर अल्लाह ताला की रहमत का पता चल जाए तो जन्नत से मायूस ना हो कभी। लिहाजा अल्लाह ताला की रहमत भी बहुत है लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला अपनी पकड़ से तुम्हें डराता है, और लेकिन साथ अल्लाह ताला रऊफुर रहीम भी है, अपने बंदों के ऊपर बड़ा मेहरबान भी है, वो पकड़ सकता है लेकिन पकड़ता नहीं है। तो उसने तौबा का एक दरवाजा रखा है, इतना बड़ा है वो दरवाजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना बड़ा है कि उसके कुआड़ों के दरमियान मशरिक से मगरिब तक का फासला है, इतना बड़ा है। और ये बंद नहीं अल्लाह ताला करता, ये बंद नहीं होना, कब बंद होगा, जब सूरज मगरिब से निकलेगा, लेकिन तब तक हम जिंदा थोड़ी होंगे कि हम इसका वेट करते रहे। दूसरा तब बंद हो जाता है ये जब जान निकलने लगती है, तब अगर कोई कहेगा मेरी तौबा तो वो कोई तौबा कबूल है। अल्लाह अकबर। और हदीस में आता है अल्लाह ताला रात भर अपना हाथ बढ़ाए रखता है ताकि दिन में बुराई करने वाला तौबा कर ले, और दिन भर अपना हाथ बढ़ाए रखता है ताकि रात को बुराई करने वाला तौबा कर ले, और अल्लाह ताला माफी को पसंद करता है। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला रात भर अपना हाथ बढ़ाए रखता है यानी अल्लाह ताला बंदे का वेट करता है कि वो तौबा कर ले, रात भर के गुनाहों पे तौबा कर ले। तो इंसान अपनी ज़ोफ़ का, अपनी कमज़ोरी का अल्लाह ताला को के सामने इजहार करे कि मैं कितना कमज़ोर हूँ और मुझे उसके रहम की ज़रूरत है, और ये कि मैं कभी अल्लाह तुझसे बेनियाज तो हो ही नहीं सकता, मैं तो तेरा मोहताज हूँ, इंसान अल्लाह ताला के सामने जाहिर करे, उसको बताए, वो जानता है, लेकिन आप उसको बताएं कि अल्लाह मेरा कोई और नहीं सिपाही तेरे, और वाकई इंसान का और कौन है जो उसके गुनाहों को माफ कर सकता। अब देखिए ना एक बड़ी प्यारी हिकायत आती है मुझे बहुत पसंद है, कि एक आदमी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है और उस दरवाजे से एक रोता हुआ बच्चा बाहर आया जो फरियाद कर रहा है, और उसके पीछे उसकी माँ है जो उसका पीछा कर रही। जब बच्चा बाहर निकल गया तो उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया, खुद अंदर चली गई। कुछ देर तो बच्चा आगे गया, फिर बड़ा परेशान हो गया, ठहर गया, सोचने लगा मैं किधर जाऊंगा, अब जिस घर से मुझे निकाला गया है यहां इसके अलावा तो मेरे पास कोई घर नहीं है, ना माँ के अलावा कोई दूसरी है जो मुझे सीने से लगा ले, कहीं इस भरी दुनिया में मेरा तो कोई नहीं। अब वो ना ऐसे परेशान हो जाता है, और परेशान होकर वापस लौटता है तो देखता है दरवाजा बंद है, तो दरवाजे से टेक लगा लेता है, वो बच्चा अपना रुखसार दरवाजे की दहलीज पे रख देता है, वहीं सो जाता है। और उसके आंसू भी उसके रुखसारों पर जम जाते हैं। कुछ देर के बाद उसकी माँ अंदर से निकलती है। बच्चे को जब इस हाल में देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, बेहाल होकर उस पर गिर जाती, उससे चिमट जाती है, उसका बोसा लेती है, रोने लगती, कहती, मेरे बेटे तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? कौन है जो मेरे सिवा तुझे पनाह देगा? मैंने नहीं तुझसे कहा था कि मेरी बात को की नाफरमानी ना करना और मुझे सजा देने पे मजबूर ना करना? फिर वो बच्चे को उठा लेती, अंदर ले जाती। इसी तरह का वाक्य है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो कैदी लाए गए थे, उनमें एक औरत किसी को तलाश कर रही थी, तो जो उसको मिलता था जो बच्चा, तो उसको एक अपने सीने से लगा लेती थी, तो उसको अपना बच्चा ढूंढ रही थी, तो अब जब अपना बच्चा मिला तो उसको सीने से लगा लिया, दूध पिलाने लगी। आपसे सल्लम ने फरमाया साहबा से कि ये औरत अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ना, कभी अपने बच्चे को फेंक सकती है आग में? साहबा ने कहा नहीं, अगर इसमें इसके बस में हो ना तो कभी भी ना अपने बच्चे को आग में फेंके। आपने फरमाया ये औरत जितनी अपने बच्चे पे मेहरबान है, अल्लाह ताला अपने बंदों पे इससे कहीं ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान है, बहुत गफूर रहीम रब है। हम बस थोड़ा सा अपने मांगने के अंदर ना वो लेकर आए, तड़प अपनी लेकर आए कि हमें कितनी ज्यादा चाहत है या हमें अल्लाह ताला बख्श दे। बंदा है मोमिन जो होता है ना, वो अपने गुनाहों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखता है, अपनी नेकियों को नहीं रखता कि मैंने तो ये नेकियां कर ली। डींगे मारते रहना हर वक्त ये सोचना कि मैं कितनी नेक हूं, बस हम कितने परफेक्ट है, हमारा पूरा खानदान एक परफेक्शन का नमूना है, ऐसे नहीं। हमारे अंदर बहुत कमी है, जो अपनी कमियों को सामने रखेगा ना उसी में आजजी आएगी, इनकसारी आएगी। वो जो हर वक्त अपनी नेकियों के जोम में रहता है उसमें तकब्बुर आएगा। तो इंसान बाज दफा गुनाह करने वाला जो है ना वो विनर हो जाता है। कैसे? कि वो अपने गुनाह पे इतना रोता है, इतना शर्मिंदा होता है कि शैतान भी कहता है कि हाय मैंने इससे क्यों गुनाह करा लिया, इसने तो तौबा करके और रो रो के अल्लाह ताला को ऐसा मना लिया कि अपने गुनाह को भी नेकी में बदल दिया। फिर जब इंसान तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ पलट आता है ना, तो अल्लाह ताला कभी उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ऐसे नहीं छोड़ता कि जाने दो अब जो जैसे भी, नहीं, अल्लाह ताला उसको थाम लेता है। इसकी एक मिसाल ऐसे देखे कि एक बच्चा अपने बाप के साये शफकत में रहता है, बाप उसको खिलाता पिलाता, बड़ा अच्छा उसको रखता है, इतना नाजो नाम में रखता है, बाहर उसकी जरूरत का ख्याल करता है। एक दिन बाप अपने बेटे को किसी काम पर भेजता है तो रास्ते में दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं, उसको कैद कर लेते हैं, उसको अपने इलाके में ले जाते हैं और उसके साथ वो सलूक करते हैं जो बाप के सलूक से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो बच्चा अपने बाप के एहसानात को याद करता है, बार बार उसके दिल में हसरतों के तूफान उठते हैं, वो सोचता है अब क्या होगा मेरा। अब वो दुश्मन की कैद में रहता है, इसी तरह दुख उसको पहुंचाते रहते हैं वो, हत्ता कि एक दिन वो उसको जान से मार देने का इरादा करते हैं। इस हाल में सोचे वो बच्चा अपने वहां के कैद के उससे निकलता है और भागता है, अपने बाप के इलाके की तरफ भागता है। जब वो भागता है ना तो अपने बाप को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और अपने आप को उस पर गिरा देता है, उसके कदमों में गिर जाता है और यूं फरियाद करता है, मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। अपने बेटे को देखें वो किस तकलीफ में है और रोने लगता है, अपने बाप को मजबूती से पकड़ लेता है, उसे चिमट जाता है, उधर दुश्मन भी आ जाता है, वो ढूंढते ढूंढते आ गया। जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो देखता है कि वो बच्चा जो है वो बाप से चिपटा हुआ है। अब वो इतना मुझे बताइए कि आपका ख्याल ख्याल है उसका बाप इस हाल में कभी अपने बच्चे को दुश्मन के हवाले करेगा? नहीं, वो खुद उन दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो अगर एक बाप की शफकत ये है तो उस जात के मुतालिक आप क्या कहते हैं जो अपने बंदे पर बाप से भी ज्यादा मेहरबान है, जितने एक माँ बाप मेहरबान होते हैं उससे कहीं ज्यादा। जब बंदा अपने दुश्मन से भाग के अपने परवरदिगार के पास आता है और अपने आप को उसके दरवाजे पर डाल देता है और रो रो के उसके सामने अपने रुखसार उसकी दहलीज पे रख देता है और यूं कहता है कि या मेरे परवरदिगार मुझे रहम कर दे, क्योंकि तेरे सिवा मेरे ऊपर कोई रहम करने वाला नहीं, मेरा तो दुश्मन मेरे पीछे है, वो तो मुझे हलाक कर देगा। वाकई हमारा दुश्मन जो है वो हमें जब तक जहन्नुम में ना ले जाए वो चैन से नहीं बैठने वाला। उसने तो ये वादा किया था कि अल्लाह मैं इसको बहकाऊंगा, मैं इसको जहन्नुम में ले जाके छोड़ूंगा। सूरह आराफ में पढ़ के देख लिया। तो ये अब कहता है बंदा कि अल्लाह मेरा तेरे सिवा तो कोई भी नहीं है, कोई पनाह देने वाला भी, मैं तेरा मोहताज हूं, मेरे पास कोई जाए पनाह नहीं है। तो आप बताएं क्या अल्लाह ताला दुश्मन के हवाले करेगा? नहीं। तो इसलिए अपने आप की ना कमजोरी जाहिर करें, अपने आप को अल्लाह ताला के आगे गिरा दे। आप बताएं, आप जो माए हैं बैठी हुई वो बताएं कि कौन सा बच्चा आपको ज्यादा उसके ऊपर रहम आता है या तरस आता है या उसकी आपको केयर होती है? वही ना जो कमजोर होता है, जो अभी बेचारा ना चलता है ना फिरता है बस ऐसे पड़ा हुआ है, उसके आपको ज्यादा उसकी केयर, फिक्र, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत तो सारे बच्चों से होती है मगर उसकी तरफ ध्यान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये अभी बेबस है ना। तो जब इंसान अल्लाह ताला के सामने अपनी बेबसी का इजहार करता है ना कि अल्लाह मैं बिल्कुल बेबस हूँ और बहुत कमजोर हूँ, और गिर पड़ता है अल्लाह के आगे, अपने आप को डाल देता है ना, तो अल्लाह ताला भी फिर उसकी केयर करता है, उसको थाम लेता है। तो इसलिए हमें बस पता होना चाहिए कि हमने कैसे बात करनी है, कैसे अल्लाह ताला को अपनी दिल की बात सुनानी है। अल्लाह ताला तो इतना अजीम है, इतना अजीम है कि वो फरमाता है कि वो खुद फरमाता है कि मेरी रहमत इतनी है, इतनी है कि है इब्ने आदम तो जब भी मुझसे दुआ करे और मुझसे गुनाह माफ करने की उम्मीद रखे तो तेरे जितने भी गुनाह होंगे मैं माफ कर दूंगा और मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। अरे इब्ने आदम, अगर अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को भी पहुंच जाए फिर भी तू मुझसे अगर बख्शिश मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि परवाह तो तब हो ना अल्लाह ताला से, ना तो किसी ने पूछना है ना किसी ने हिसाब लेना। अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम अगर तू जमीन भर के गुनाह भी ले आए फिर मुझे इस हाल में मिले कि तूने बस मेरे साथ किसी को क्यों शरीक ना किया, शिर्क ना किया, तो मैं इतनी ही मिकदार में तुझे बख्शिश से नवाज दूंगा, यानी जितने तेरे गुनाह हैं उतनी ही बड़ी बख्शिश के साथ मैं तेरी तरफ बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, ऐसे रब को छोड़ के इंसान कहीं और जाए और भटके और उससे दूर हो तो खुद बड़ी बदबख्ती की बात है ये तो। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूंगी, हर एक से कहती हूँ, प्लीज सिर्फ अपने रब को पहचानने की कोशिश करें, सिर्फ उसको जानने की कोशिश करें, प्लीज खुदा के लिए सिर्फ रमजान के मुसलमान ना बने, खुदा के लिए। आपका ऐसे ताल्लुक अपने रब के साथ सिर्फ रमजान का नहीं है, आप सारा साल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब चीजें, सब नेमते इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रमजान में तो नहीं करते। फिर रमजान के रमजान ही क्यों हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ आते हैं और रमजान गुजर जाता है तो हमें परवाह भी नहीं कौन रब और क्या उसकी बातें और क्या उसकी फरमाबरदारी। ऐसे जैसे हमने कभी उससे कोई फरियाद की ही नहीं, ऐसे जैसे हम कभी उसके सामने हाथ उठा के बैठे ही नहीं, ऐसे जैसे हमें जानते ही नहीं हम कि वो कौन है, ऐसे ना बन जाए। खुदा के लिए अपने रब को पहचाने, उसकी पहचान उसके कलाम से होती है, उसकी बातों से पता चलता है उसके बारे में। जैसे जैसे इंसान होता है ना कोई खामोश बैठा रहो हमें उसको इतना पता नहीं चलता, जो ही वो बोलता है हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला की पहचान जो चाहता है ना उसके कलाम से उसकी पहचान होगी, उसके कलाम को सीखें वो पता चलेगा वो रब कौन है कैसा है। खुदा के लिए अपने खालिक जिसने आपको पैदा किया, आपको बनाया है, आपको तख्लीक किया, आपकी एक एक नोक पलक संवारी, खुदा के लिए उसको जानने तो सही वो कौन है। और सबसे बड़ी उम्मीद देने वाली आयत कुराने पाक में है, कुल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो ना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीया, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देता है। आप सोचे तो सही, किसी दिन आप ठान तो ले ना कि मैंने मैंने बस कर देने, अब मैंने गुनाह वाली जिंदगी छोड़ देनी। किसी दिन सोच तो लेना, जिस दिन सोच लिया ना, बस उस दिन बख्शिश हो जानी। अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देगा। तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया ना, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, कौन इबादी? कोई पैगम्बरों को नहीं खिताब हो रहा है, कोई नेक लोगों को नहीं। अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं। कैसे? अपनी जानों पे ज्यादती कैसे की है? गुनाह करके। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नहू अल गफूर रहीम, वो तो बड़ा ही गफूर रहीम है। और वो फरमाता है, वरहमती वसियत कुल्ला शई, मेरी रहमत ने हर चीज को घेरा हुआ है। तो अल्लाह ताला की रहमत की रात एक ही आखिरी रह गई है। अल्लाह ताला तो वही है, हमने अपने रब से ताल्लुक नहीं तोड़ लेना। ये नहीं कि रमजान खत्म हो गया, रब से ताल्लुक ही टूट गया, नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन हाँ, वो बात नहीं रहेगी, वो रहमतें नहीं रहेंगी। तो लिहाजा इन रहमत की रातों में अल्लाह ताला के आगे झुके, उसके आगे तौबा इस्तग़फार करें। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह करके दुआ मांगे, सजदे में जाके दुआ मांगे, बहुत देर सजदे में पड़े रहें कि अल्लाह अब ये सर ना उठेगा तो तू इस हाल में उठाना कि मेरी बख्शिश हो चुकी हो। तो हम क़याम के लिए चलेंगे, 30 मिनट्स का हम इंशाल्लाह क़याम करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो फिर इंशाल्लाह ये तिलावत सुनेंगे, और क़याम के बाद हम इंशाल्लाह वापस आएंगे। 30 मिनट्स का आप अलार्म लगा के इंशाल्लाह जाएँ। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।